अहर रहमान रहीम, ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सम्मानीय श्रोता जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। आज का कार्यक्रम पवित्र कुरान के सूरह निसा की 70वीं और 18वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से किया जा रहा है। किरात का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं श्री मोहम्मद जादा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। केवल उन लोगों की तौबा स्वीकार करना ईश्वर के जिम्मे है जो अज्ञानता के कारण बुराई कर बैठते हैं, फिर शीघ्र ही तौबा कर लेते हैं, तो यही लोग हैं जिनकी तौबा ईश्वर स्वीकार कर लेता है, और ईश्वर ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बुरे कर्म करते रहे और फिर जब मौत सामने आ गई तो उन्होंने कहा कि अब हमने तौबा कर ली, और न तौबा उनके लिए है जो मरते समय तक काफिर रहे, उनके लिए हमने कड़ा दंड तैयार कर रखा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, शहरीवर की 28, सफर की 22 और सितंबर की 19 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा और उसके बाद विश्व दर्पण हम आपको सुनवाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा सेहत का राज। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों के बावजूद हमने जायरीन की निस्वार्थ सेवा की है। 80 वर्षीय अमिंदर सिंह अपनी पार्टी समेत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ताइवान पर अगर हमला हुआ तो अमरीका सेना भेजेगा। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी अमरीका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि राष्ट्रसंघ की महासभा इस्लामी गणतंत्र ईरान के दृष्टिकोण को बयान करने का उचित स्थान है। सोमवार को न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के निमंत्रण पर राष्ट्रसंघ की महासभा के 77वें वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और क्षेत्र के मुद्दों को बयान करने के लिए महासभा का प्लेटफॉर्म एक उचित प्लेटफॉर्म है। ईरान के राष्ट्रपति ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि न्यूयॉर्क में 5 दिनों के आवास के दौरान वे किसी भी अमरीकी अधिकारी से मुलाकात नहीं करेंगे। रईसी ने कहा कि जो बातें सुनी नहीं जाती उनको बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जैसा स्थान बहुत उपयुक्त है, क्योंकि विश्व में संचार माध्यमों पर वर्चस्ववादियों का नियंत्रण है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि न्यूयॉर्क में परमाणु समझौते की बहाली और प्रतिबंधों को हटाए जाने को लेकर वार्ता हो सकती है। सोमवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी चाकी का कहना था कि ईरान अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए हर सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करेगा। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में महासभा का 77वां सम्मेलन आयोजित होने वाला है जिसमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रैसी भाग लेने वाले हैं। किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान सीमा पर हो रही झड़पों के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में कनानी चाकी का कहना था कि पड़ोसी देश होने के नाते दोनों ही देश ईरान के लिए खास महत्व रखते हैं, इसलिए ईरान ने दोनों के बीच तनाव कम करने और द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए अपने सहयोग का प्रस्ताव पेश किया है। गौरतलब है कि किर्गिजिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर होने वाली झड़पों में अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है।
इराक के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम इस समय बहुत बुरे राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन के लाखों श्रद्धालुओं की हमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता ने इमाम हुसैन के लाखों जायरीन की सेवा करके पूरी दुनिया को मेहमान नवाजी का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश की असाधारण परिस्थितियों के बावजूद इराकियों ने खुले दिल से इमाम हुसैन के जायरीन का स्वागत किया। इराकी प्रधानमंत्री अल काजिमी ने इमाम हुसैन के चेलुम या अरबईन के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देश के सुरक्षा बलों की सराहना की जिन्होंने अरबईन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया। उन्होंने इस बात पर आभार व्यक्त किया कि अरबईन मार्च के दौरान देश के सुरक्षा बलों ने जायरीन की हर प्रकार की सुरक्षा की और किसी भी आतंकवादी घटना को नहीं होने दिया। मुस्तफा अल काजमी ने बताया कि सन 2003 के बाद से इराक इस समय सबसे गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलने के लिए हम रास्ता तलाश कर रहे हैं। अल काजमी का कहना था कि हम शांत एवं स्थिर इराक की कामना करते हैं।
इराक के पवित्र स्थलों में से एक सामरा में इस समय 15 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। करबला में अरबईन मनाने के बाद अब जायरीन इराक में अन्य पवित्र स्थलों का रुख कर रहे हैं। सोमवार 19 सितंबर 2022 को सामरा में 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। सामरा में रोजे के मीडिया प्रभारी मोहम्मद हुसैन अल मनावेरी ने बताया कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोजों पर इस समय जायरीन का बहुत बड़ा हुजूम है। उन्होंने बताया कि वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं में से अधिकांश विदेशी हैं जो ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत, बहरीन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और कई अन्य देशों के नागरिक हैं। अल मनावेरी ने बताया कि पूरी क्षमता के साथ हम इन जायरीन की सेवा में लगे हुए हैं। सामरा में इस समय 55 से अधिक मुकीब या स्टॉल लगाए गए हैं ताकि जायरीन को खाने पीने की कोई परेशानी न हो।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस छोड़ने के करीब एक साल बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज अपनी पार्टी समेत बीजेपी में शामिल हो गए। सोमवार को ही इससे पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 80 वर्षीय अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय कर दिया है। 5 दशक तक कांग्रेस में रहने के बाद पिछले साल पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। अमरिंदर सिंह के साथ 7 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीएलसी ने बीजेपी और सुखदेव सिंह ढींडसा की अगुवाई वाले शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उसका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया था और खुद सिंह को अपने गढ़ पटियाला शहर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था।
पाकिस्तान की एक अदालत ने एक महिला जज और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बयान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद के आरोप हटाए जाने का आदेश दिया है। सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खान पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई करते हुए कहा, खान के बयानों को लेकर एंटी टेरर एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उम्र कैद और यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। गौरतलब है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने पुलिस अधिकारियों और एक महिला जज के खिलाफ बयान दिया था, जिसने उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख ने अपने भाषण में इस्लामाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, जिन्होंने गिल को 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। हालांकि क्रिकेटर से नेता बनने वाले खान ने अधिकारियों को धमकाने के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। उनके इन बयानों को लेकर एंटी टेरर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और अब उनके खिलाफ लगे एंटी टेरर एक्ट को भी गलत करार दे दिया है। इस वर्ष अप्रैल में विश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता से बाहर होने के बाद इमरान खान ने लगातार सरकार और सेना की आलोचना की और अमेरिका पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। खान ने पूरे देश का दौरा कर रैलियों में सरकार और सेना पर हमला करते हुए फिर से चुनाव करवाने की मांग की थी।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमरीकी सेना ताइवान का बचाव करेगी। रविवार को एक इंटरव्यू में बाइडन ने कहा कि ताइवान पर अगर हमला हुआ तो अमरीका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। CBS के साथ एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम ताइवान के बचाव में जरूर आगे आएंगे और उसका बचाव करेंगे। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमरीका के साथ उसके एक समझौते के तहत औपचारिक रूप से अमरीका भी एकल चीन को मान्यता देता है। हालांकि अमरीका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है जिसे चीन अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। बाइडन का कहना था कि वो ताइवान को स्वतंत्रता की घोषणा के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका फैसला खुद इस देश की जनता और सरकार को करना है। ताइवान के समर्थन में सेना भेजने को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति का यह बयान वाशिंगटन की पूर्व की नीति की तुलना में काफी स्पष्ट है। बाइडन इससे पहले भी ताइवान को लेकर सैन्य हस्तक्षेप की बात कह चुके हैं। इस साल टोक्यो की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि ताइवान को लेकर उनकी नीति नहीं बदली है।
लेबनान के हिजबुल्ला आंदोलन का कहना है कि देश की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा इस समय अमरीका है। हिजबुल्ला की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष सफयुद्दीन ने कहा है कि अमरीका जहां पर लेबनान की प्रगति के मार्ग की बाधा बना हुआ है वहीं पर वो इस देश से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान पर भी रोक लगाता है। अलमनार टीवी चैनल के अनुसार हिजबुल्ला के नेता सफयुद्दीन ने बताया कि लेबनान में हालात को खराब करने के लिए सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस नीति का शिकार लेबनान के कुछ गुट हो रहे हैं जिनको जानना चाहिए कि इससे देश के भीतर मतभेद फैलने के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। सफयुद्दीन का कहना था कि हिजबुल्ला इस बात की कदापि अनुमति नहीं देगा कि कुछ नासमझ या मूर्ख गुट अमेरिका और इसराइल की उन योजनाओं को लेबनान में लागू करें जिससे देश में मतभेद फैले और अशांति उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि हम लालची नेताओं को सबक सिखाना जानते हैं। उल्लेखनीय है कि लेबनान में लंबे समय से राजनीतिक संकट चला आ रहा है जिसके समाधान के प्रयासों को हमेशा ही अमेरिका और उसके क्षेत्रीय घटकों की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से पहले सोमवार को उनकी शव यात्रा निकाली गई। महारानी के अंतरिम संस्कार में भाग लेने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन समेत 500 राष्ट्राध्यक्षों और गणमान्य विदेशी अतिथियों को बुलाया गया है। 1965 के बाद पहली बार किसी को ब्रिटेन में राजकीय अंतिम संस्कार का सम्मान दिया जा रहा है। आखिरी बार ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। ब्रिटेन में इसी के साथ आज 11 दिन का शोक खत्म हो गया। इस अवसर पर बाइडेन ने कहा है कि महारानी ने जिनकी 96 साल की उम्र में 8 सितंबर को मौत हो गई थी 70 साल तक सेवा की धारणा का अनुपम उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें उनकी मां की याद दिला दी। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों में आए नए मोड़ के बारे में।
तालिबान के अधिकारियों ने ईरान और अफगानिस्तान के बीच,
और फिर बात करेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ होते व्यापक प्रदर्शनों के बारे में,
फ्रांस के राष्ट्रपति के त्याग पत्र की मांग को लेकर,
और अंत में चलेंगे भारत जहां दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी चिकित्सा उपकरणों की प्रदर्शनी के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
दिल्ली के प्रगति मैदान में चिकित्सा उपकरणों की,
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को ईरान की योजना से बड़ी उम्मीदें। एक नई सड़क के निर्माण से ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में तेजी आ सकती है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर रिजवी।
तालिबान के अधिकारियों ने ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक नया पारगमन मार्ग या ट्रांजिट रास्ता बनाने की घोषणा की है। तालिबान के उद्योग और व्यापार विभाग के प्रमुख मौलवी फाजिल मोहम्मद फजली के अनुसार निमरोज में सिल्क ब्रिज रोड के बगल में एक नई सड़क के निर्माण से ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में तेजी आएगी। ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार सहयोग के विकास के लिए संचार के कई तरीके हैं। सिल्क ब्रिज रोड के अलावा हम हेरात खवाफ रेलवे लाइन का उल्लेख भी कर सकते हैं, जिसे 4 लाइनों व भागों में परिभाषित किया गया है। ईरान सरकार ने इस रेलवे लाइन के 3 खंड बनाए हैं, जबकि चौथा हिस्सा अफगानिस्तान के अंदर है, जिसका निर्माण कार्य रुका हुआ बताया जा रहा है। हालिया अफगानिस्तान में राजनीतिक परिवर्तन के बाद इस देश और ईरान के बीच व्यापार विनिमय में 20% की कमी आई है, लेकिन व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए तालिबान का दृढ़ संकल्प $3 अरब तक संबंधों में सुधार की शुभ सूचना देता है। अतीत में यह अनुमान लगाया गया था कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की मात्रा बढ़कर $5 बिलियन हो जाएगी। अफगान विशेषज्ञ शकीबा हाशमी कहती हैं कि ईरान हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ रहा है और अब ये देश इस देश के लोगों की जरूरतों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता और प्रदाता है। इस बीच सांस्कृतिक और सुरक्षा दोनों ही सामान्य मुद्दे हैं, ईरान और अफगानिस्तान को एक साथ ला रहे हैं। अफगानिस्तान की समुद्र तक पहुंच की कमी को देखते हुए इस देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान के परिवहन मार्गों की भी आवश्यकता है। अफगानिस्तान के मुद्दों के विशेषज्ञ अमीन रजाई निजात कहते हैं कि तालिबान के इस देश पर नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान से कई देशों से सैनिकों की वापसी के साथ ही ईरान लगभग एकमात्र ऐसा देश है जो अफगानिस्तान के लोगों की मदद करता है और ये मुद्दा मानवीय सहायता के मामलों में पूरी गंभीरता के साथ जारी है। किसी भी मामले में ईरान की सीमाओं की सुरक्षा ने अफगान व्यापारियों को ईरान के साथ संचार मार्गों का विस्तार करके अपनी वस्तुओं के आदान प्रदान की मात्रा बढ़ाने के लिए सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही सांस्कृतिक समानता और साझा इतिहास ने ईरान और अफगानिस्तान के लोगों के बीच एक अटूट संबंध पैदा कर दिया है जो राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हालिया वर्षों में अफगानिस्तान पर विदेशियों के कब्जे के साथ हुए विदेशी हस्तक्षेप के बावजूद ईरान के साथ अफगानिस्तान का घनिष्ठ सहयोग इस देश में स्थापित किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के तहत जारी रहेगा।
और अब चर्चा करते हैं फ्रांस में अपने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ आम लोगों के लगातार बढ़ते गुस्से के बारे में। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रां को भी अब अपने किए पर पछतावा होने लगा है। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
फ्रांस के राष्ट्रपति के त्याग पत्र की मांग को लेकर पेरिस में व्यापक प्रदर्शन किए गए। एमैनुएल मैक्रां के त्यागपत्र की मांग करते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए। इन विरोध प्रदर्शनों की कॉल फ्रांस की दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टियों ने दी थी। प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की मांग के साथ ही साथ नेटो से फ्रांस के निकलने की भी मांग कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि फ्रांस में दिन प्रतिदिन खराब होती आर्थिक स्थिति के कारण वहां पर इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों में खराब होती अर्थव्यवस्था का कारण रूस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध हैं। प्रतिबंधों को लगाने वाले देशों में फ्रांस भी शामिल है। प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में अब जबकि रूस ने यूरोपीय देशों के लिए तेल और गैस के निर्यात को सीमित या बंद कर दिया है, तो वहां पर आर्थिक संकट पैदा होने लगा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकतर फ्रांसीसी इस प्रकार के प्रतिबंधों का विरोध करते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस के विरुद्ध ये सोचकर प्रतिबंध लगाए थे कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और वो एक कमजोर देश बन जाएगा। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो इसका परिणाम उल्टा ही निकला। वर्तमान समय में वे यूरोपीय देश बहुत ही बुरी तरह से परेशान हैं, जिन्होंने अमरीका के उकसावे में आकर रूस के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब फ्रांस को इस बात की चिंता सता रही है कि आने वाले जाड़े के मौसम में वो अपनी जरूरत की ऊर्जा का प्रबंध कैसे करेगा। यूरोपीय देशों में तेल और गैस के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है। रूसी अधिकारियों का मानना है कि यूरोप में ऊर्जा संकट के कारण आने वाले जाड़ों में प्रत्येक 1000 घन मीटर गैस का मूल्य बढ़कर 5000 यूरो हो जाएगा। इस बात को यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक भूकंप के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। हालत अब ये हो गई है कि बहुत से यूरोपीय नागरिकों के पास गैस और बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। इन्हीं बातों के दृष्टिगत फ्रांसीसी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की यात्रा करके वहां के नेताओं से पेरिस के लिए गैस की सप्लाई को बढ़ाने की मांग की है। हालांकि अल्जीरिया के अधिकारियों ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया तो नहीं दिखाई, बल्कि फ्रांस की इस मांग को अपनी कई शर्तों से जोड़ दिया। विशेष बात यह है कि फ्रांस ने आरंभ में रूस के विरुद्ध कड़ी नीति अपनाई, लेकिन रूस की ऊर्जा पर यूरोप के 40% निर्भर होने के कारण उनका रवैया अब काफी बदल गया है। टीकाकारों का कहना है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिलहाल यूरोप में जो ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है, उसने वहां पर परिस्थितियों को बहुत अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे में मैक्रां के त्यागपत्र की मांग को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शन फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए नई समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत की राजधानी दिल्ली में इस समय चिकित्सा उपकरणों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में ईरान की मेडिकल उपकरणों को बनाने वाली 10 कंपनियों के स्टॉल भी लगे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
दिल्ली के प्रगति मैदान में चिकित्सा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये मेडिकॉल नामक भारत की सबसे बड़ी B2B चिकित्सा उपकरणों की प्रदर्शनी है, जिसमें भारत के अतिरिक्त ईरान सहित कुछ दूसरे देशों के विकसित एवं नवीनतम चिकित्सा उपकरणों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रकार की इस 30वीं प्रदर्शनी में ईरान हाईटेक का स्टॉल भी लगा है, जहां ईरान की 10 कंपनियां अपने बनाए हुए नवीनतम एवं विकसित चिकित्सा उपकरणों को प्रदर्शित कर रही हैं। एक ईरानी व्यापारी रहमत न्याज ने कहा कि हम पहली बार भारत के इस बाजार में कदम रख रहे हैं और आपसी व्यापार के लिए भारतीय कंपनियों से निरंतर वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ईरान अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता और बाजार के अनुकूल मूल्यों के सहारे اس بازار میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے.
با شرکت های مختلفی ما جلسات داشتیم با شرکت های.
ایک ایرانی چکتسک ڈاکٹر ابراہیم نجف زادے نے کہا کہ ہم نے نروز اور برین آپریشن سے سمبندھت چکتسا اپکرنوں کو پردرشت کیا ہے جو ہمارا کھیتر ہے, اور بھارتی کمپنیوں سے ہم نے دوپکشی ویاپار کے سندرب میں سکاراتمک وارتا کی ہے. ایرانی اسٹال پر آئی سی یو اور سی سی یو میں کام آنے والے چکتسک اپکرنوں, کینسر کی پہچان کرنے والے نوینتم اپکرن اور کئی دوسرے چکتسک اپکرنوں کو پردرشت کیا گیا ہے جو لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں.
اب ایران کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران میں بھی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اور اگر آپ یہاں دیکھیے ان کے پاس کمپلیٹ نیویگیشن سرجیکل سمولیشن سسٹم ہے, روبوٹک سرجیکل سسٹم ہے, دے ہیو اے پیشنٹ مانیٹری سسٹم, اتنا شاندار ہے ان کا کہ یورپ کی کئی کمپنیوں کو بنا کے دے رہے ہیں لوگ.
اس پردرشنی میں بھارت کی لگ بھگ 90% کمپنیوں نے اپنے وکست چکتسا اپکرنوں سے لے کر ہاسپٹل کلیننگ کے اپکرنوں کو بھی عام لوگوں وشیش کر ویاپاریوں کی جانکاری کے لیے پیش کیا ہے.
جو لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہے, لیٹسٹ اپڈیٹس جو بھی آتے ہیں, اس سے اویئر ہونے کا موقع ملتا ہے وہ لوگ جن کو سمے نہیں مل پاتا ہے, جو ادھر اٹ از ان سیلس لائن ان ہاسپٹل انڈسٹری کے اندر ہیں, جو ہاسپٹل جابس کے اندر ہیں, یا ڈاکٹرس ہیں, ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورکس ہیں, ان کو ٹائم نہیں ہے, وہ صبح سے لے کے شام تک اپنے جاب میں. ان چیزوں ان کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ ایک جگہ پہ سب گیدر ہو جاتا ہے, کلیکٹیولی انفارمیشن ان کو ایک جگہ سے مل پاتا ہے.
بتایا جاتا ہے کہ پچھلے ایک دہائی میں ویشوک استر پر چکتسا کے کھیتر میں کافی پرگتی ہوئی ہے. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دلی.
دوستوں, راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے.
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं. अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विश्व दर्पण.
विश्व दर्पण. श्रोता, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है. मैं हूं अहमद अब्बास. कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईरान पर लगे गैर कानूनी अमरीकी प्रतिबंधों को हटवाने के लिए होने वाली वार्ता की. ये वार्ता कई महीनों से हो रही है, और हालिया समय में ऐसा प्रतीत होने लगा था کہ وارتہ نتیجے پر پہنچ گئی ہے اور کبھی بھی سمجھوتا ہو جائے گا. یہاں تک کہ وینا میں انتراشٹریہ سنستھانوں میں روس کے راجدوت میخائل اولیارنوف نے کہہ دیا کہ 1 ستمبر تک سمجھوتا ہو جائے گا. یورپ کی اور سے بھی اسی طرح کے بیان آ رہے تھے کہ سمجھوتے کے لیے بڑا اچھا واتاورن بن گیا ہے اور کبھی بھی سمجھوتا ہو جائے گا. مگر اس کے بعد اچانک دیکھنے میں آیا کہ پشچمی دیشوں کے ادھیکاریوں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ پرمانو ارجا سنستھا IAEA کے پرمکھ کا لہجہ بدلنے لگا. IAEA کے پرمکھ رافائل گروسی نے کہا کہ وہ ایران کے پرمانو سمجھوتے کی سویلین پرورتی کی پشٹی نہیں کر سکتے. یورپی سنگھ کے ودیش نیتی پربھاری جوزف بوریل نے بیان دیا کہ پرمانو سمجھوتے کو بحال کرنے کے لیے جاری کوششیں بند گلی میں پہنچ گئی ہیں. بوریل پچھلے 1.5 سال سے پرمانو سمجھوتا بحال کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے بیچ مدھیستتا کرتے رہے ہیں. بوریل نے فرانس پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو مسودہ ہم نے پچھلے مہینے پیش کیا وہ دونوں پکشوں کے بیچ بڑا سنتولت مسودہ ہے. پچھلے 2 مہینوں میں دونوں پکشوں کے پرستاؤ ایک دوسرے سے کافی قریب تھے, مگر اب استھتی یہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے سٹینڈ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. امریکہ کے ودیش منتری اینٹنی بلنکن تو اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے ایران نیوکلیئر ڈیل کے کھلے عام الگھن کا ذمہ دار امریکہ نہیں کوئی اور ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اس ڈیل سے غیر قانونی روپ سے نہیں نکلا تھا, جبکہ سچائی یہ ہے کہ اس ڈیل سے غیر قانونی روپ سے ٹرمپ سرکار نکلی تھی. اس معاملے میں امریکہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بالکل سپشٹ ہے, مگر پھر بھی وہ ایران کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے.
In past weeks we had closed some gaps. Iran had moved away from some extraneous demands, demands unrelated to the JCPOA itself. However, the latest response takes us backwards, we are not about to agree to a deal that doesn't meet our bottom line requirements and or that tries to continuously introduce extraneous demands that are not relevant to the JCPOA itself. If we conclude a deal, it's only because it will advance our national security. The president is focused on that.
अमरीकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्काल्स भी इस खेल में भरपूर तरीके से कूद पड़े और ये जोर देने लगे कि ईरान को जो समझौता पेश किया जा रहा है उसे तत्काल स्वीकार कर ले।
Die drei der europäische Vermittler haben Vorschläge gemacht und es gibt jetzt eigentlich
सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि पश्चिमी देशों के अधिकारियों का स्वर इस तरह बदल गया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की पूर्व अधिकारी और ईरान न्यूक्लियर वार्ता से जुड़ी रह चुकी हिलेरी मान लेवरेट कहती हैं कि इस समय लगने लगा था कि समझौता होने ही वाला है, मगर फिर स्थिति बदल गई। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो आगामी चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित स्थिति से संबंधित है।
I think two things changed here in Washington. One was a determination, an evaluation by Biden's political advisors that the Democrats had a better chance of keeping at least the Senate in the upcoming November 8th elections here. There had been a tremendous pessimism that the Democrats would keep the Senate or the House up until maybe the beginning of August, when President Biden's poll numbers started to rise significantly. And that has to do with a few things here in our domestic politics. But the idea, the prospect that the Democrats could retain at least the Senate has made the administration, which has always been hesitant about rejoining the JCPOA, it has made it even more hesitant to do so.
लेवरेट के अनुसार दूसरा कारण इसराइल की आंतरिक राजनीति है, जिसका सीधा असर अमेरिका की राजनीति
Very much something that's driven by domestic politics here and domestic politics in Israel, which the Biden administration takes very, very seriously in terms of how that affects domestic politics in the United States.
ईरान की परमाणु वार्ताकार टीम के सलाहकार मोहम्मद बरंदी का कहना है कि दरअसल अमेरिका और यूरोप चाहते ही नहीं कि ठोस समझौता हो जिसमें कोई भ्रामक बिंदु ना हो। अगर पश्चिमी देशों के पास ये इच्छा शक्ति होती तो ये समझौता कई महीने पहले हो गया होता।
The draft document was the result of months of negotiations. And in fact, if the United States and the Europeans had been sincere from the beginning, and if they had refrained from dragging their feet this whole time, we would have had something like this draft document 8-9 months ago. So they've been delaying it all along because they never really wanted an airtight deal where the Iranians would be able to implement the JCPOA in full. What they wanted was a deal with ambiguities, a text with ambiguities and loopholes, so that the United States, whenever it wants, it could use those loopholes to undermine the deal or to put pressure on Iran.
Mohammad Marandi ne yaad dilaya ki jab European Sangh ke videsh niti prabhari Josep Borrell ne final masauda ke naam se ek masauda Iran ko diya aur Iran ne uske bare mein apna jawab diya to Borrell ne bayan diya ki Iran ka jawab bada tarksangat hai. अब अगर इस मसौदे को ईरान द्वारा सुझाए गए तर्कसंगत बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया जाता तो समझौता हो गया होता, मगर देखने में यह आया कि पश्चिम ने टाल मटोल शुरू कर दी।
So, but this draft document that was circulated a few weeks ago, when the Iranians responded to it and they gave their corrections or those things that they stated the issues that they thought needed to change, the EU foreign policy chief said that the Iranian response was reasonable. So if the United States had accepted what was on the table then, we would have had a deal now. Instead, the Americans gave a response which was obvious to the Iranians, to be a tactic or a text to delay an agreement.
अमेरिकी पूर्व कूटनीतिक लेवरेट ने एक महत्वपूर्ण बात कही. उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल में यह आभास मौजूद है कि ईरान परमाणु बम के करीब नहीं है, तो फिर समझौता करने की क्या जल्दी है.
The United States continues to say, my colleagues here in Washington continue to say that Iran is months away from nuclear weapons, weeks away from nuclear weapons, days away from nuclear weapons, and it never happens. And so there's this sense that the urgency that is being put forward is not a real one.
Vish Darpan. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण. हर हफ्ते सोमवार को
यही से समझा जा सकता है कि पश्चिमी देशों पर अगर ईरान भरोसा नहीं करता और खुलकर इस बात का ऐलान भी करता है कि उसे पश्चिम पर भरोसा नहीं, तो ये बिल्कुल सही स्टैंड है. लंदन स्थित वरिष्ठ टीकाकार मुश्ताक अली लाशारी का कहना है कि ईरान ने जो समझौता किया उसकी पूरी प्रक्रिया पर और इस समझौते से अमरीका के बाहर निकल जाने के तरीके पर हमेशा नजर रखनी चाहिए. अतीत से जरूर सबक लिया जाना चाहिए.
आप इसकी तारीख को देखें. ये जो न्यूक्लियर मुआहदा 2015 में हुआ, उसके बाद क्या हुआ है वो हमारे सामने है, तारीख है. और जब तक आप तारीख से सबक नहीं सीखेंगे वो तारीख दोबारा अपने आप को दोहराती रहती है. ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौकफ है और जाना माना एक रवैया है कि तारीख से सबक सीखना सबसे पहली बात है. इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुआहदा हुआ, उसमें 7 ममालिक शामिल हुए और उन 7 ममालिक ने कुछ असूल तय किए कि इन असूलों पे अमल दरामद किया जाएगा आने वाले वक्तों में. और उस पे अमल दरामद की जो ईरान की तरफ से वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, आईईए का जो सर्टिफिकेट्स हैं और कई उनके बयानात हैं, यूरोपियन यूनियन का जो ईरान से ये कहना है कि आप अभी ये मुआहदा खत्म ना करें, हम ईरान अमेरिका को इस पे कायल करेंगे कि वो यक तरफा अपना जो ये विदड्रॉल है डोनाल्ड ट्रंप का इसको खत्म करे और मुआहदे पे वापस शरीक हो. ईरान ने पूरा टाइम दिया उनको, पहले कुछ महीने, फिर 1 साल का टाइम दिया और उसके बाद जाके अपनी उस जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने अमल शुरू किया. तो मैं समझता हूँ कि जब असूली मौकफ है और एक सच्चा मौकफ है तो उसके खिलाफ गैर असूली और झूठा मौकफ कभी भी तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए.
मुश्ताक लाशारी दरअसल ये कहना चाहते हैं कि ईरान को अमेरिका पर हरगिज भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिका इस लायक नहीं है. उनका कहना है कि इसराइल का भारी दबाव अमेरिका और यूरोप पर है. ईरान के परमाणु समझौते को लेकर जहां इसराइल को बड़ी चिंता है और वो कोशिश कर रहा है कि ये समझौता न होने पाए, वहीं क्षेत्र के कुछ देश चाहते हैं कि ये समझौता हो जाए. खासतौर पर कतर की तो इच्छा है कि परमाणु समझौता भी बहाल हो और साथ ही अरब देशों के साथ ईरान से वार्ता शुरू हो जाए. कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आले सानी ने एक इंटरव्यू में, जो उन्होंने फ्रांसीसी मैगजीन लो वन को दिया, कहा कि ईरान हमारे लिए बड़ा अहम देश है. फारस खाड़ी के देशों के लिए हमारी सलाह ये है कि वे ईरान से बात करें. उन्होंने कहा कि ईरान और कतर की संयुक्त गैस फील्ड है और हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं. हम तो यही चाहते हैं कि फारस खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं ईरान से बात करें. बेशक मतभेद हैं लेकिन हमें चाहिए कि साथ में बैठें और मतभेदों के बारे में बात करें. बातचीत प्रत्यक्ष रूप से हो, इसमें किसी बाहरी देश का दखल नहीं होना चाहिए. قطر کے امیر کے بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب دنیا کے دیش ایک دھرویہ وشو ویوستھا کو سماپت ہو چکا مانتے ہیں اور ان کی سمجھ ہے کہ دنیا اب بہت دھرویہ ہو چکی ہے۔ لندن استھت ورشٹھ ٹیکہ کار مشتاق لاشاری کا کہنا ہے کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اب دنیا ملٹی پولر بن رہی ہے، یہ بڑے بدلاؤ کی نشانی ہے۔
چین اور روس کا ایک واضح سٹینڈ رہا ہے تھرو آؤٹ، اور آج ہم ایک بائی پولر ورلڈ نہیں بلکہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایران ایک ریجنل فورس کے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مغربی طاقتوں نے مل کے اور ایک سازش کے ذریعے روس کو یوکرین میں انگیج کر لیا ہے۔
یہ تو طے ہے کہ اگر امریکہ اور پشمی دیش ایران کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس کوشش میں ہرگز کامیابی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ ایران کی نظروں کے سامنے پورا اتہاس اور پشمی دیشوں کی چالیں ہیں، ایران ان چالوں سے دوبارہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ شروع کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम सेहत का राज।
सेहत का राज।
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, फलों की विशेषता ये होती है कि वे मनुष्य को स्वस्थ रखते हैं। इन फलों की अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत ही मशहूर होते हैं, जैसे आम, सेब और केला। इसके मुकाबले में कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के गुणों से भरपूर होते हैं, लेकिन वे अधिक मशहूर नहीं होते। उन्हीं फलों में से एक फल का नाम है कीवी। कीवी का वैज्ञानिक नाम है एक्टिनेडिया डेलिसियोसा।
कीवी मूलतः चीन का फल है, इसे चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिणी चीन का स्थानीय फल है जो बाद में न्यूजीलैंड पहुंचा। 20वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद कीवी की बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी। इस फल का नाम न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी के नाम पर है, जो बहुत ही सुंदर होता है। कीवी का फल अंडाकार होता है, जो 5 से 8 सेंटीमीटर का होता है। इसका अंदर का भाग हरा होता है, जबकि इसका छिलका खाकी रंग का होता है।
ये फल खट्टा-मीठा होता है। इसके गूदे का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके छिलके को उतार कर फेंक देते हैं, जो सामान्यतः कठोर होता है। कीवी के फल में छोटे छोटे काले रंग के गोल बीज होते हैं, जिन्हें खाया जाता है। चीन अब भी पूरे विश्व में कीवी का सबसे बड़ा निर्यात करता है। हालांकि व्यापारिक उद्देश्य से न्यूजीलैंड में भी व्यापक स्तर पर कीवी की खेती की जाती है। कहते हैं कि सन 1963 में पहली बार ये फल भारत पहुंचा। कीवी की खेती सबसे पहले भारत में शिमला में हुई, बाद में ये पूरे देश में फैल गया।
विश्व में कीवी का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात करने वाला देशों में चीन, न्यूजीलैंड, इटली, ईरान, चिली, यूनान और फ्रांस के नाम सर्वोपरि हैं। चीन प्रतिवर्ष कीवी का 20 लाख टन की पैदावार करता है। ईरान में गिलान और मजंदरान वे प्रांत हैं जहां पर कीवी पैदा करने की जलवायु और मिट्टी पाई जाती है। कीवी निर्यात करने के मामले में ईरान विश्व में 8वें स्थान पर आता है। ईरान से उच्च स्तर की बहुत अच्छी क्वालिटी की कीवी निर्यात की जाती है।
कीवी विटामिन सी का बहुत समृद्ध स्रोत है। इसके भीतर संतरे से भी अधिक विटामिन सी होता है। इसके भीतर पाए जाने वाले छोटे छोटे काले बीजों ब्लैक बीन्स में विटामिन डी पाया जाता है। कीवी में विटामिन ए, ई, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री और बी टाइप विटामिन होते हैं। इसके अतिरिक्त ये फल पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे बहुत से पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं।
कीवी में पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई इसमें भरपूर होता है, जो टी कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी दृढ़ बनाता है। इस स्वादिष्ट फल के गुदे के भीतर घुलनशील फाइबर होता है, जो बड़ी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये कैंसर के खतरे को भी कम करता है।
कीवी फल के जूस के नियमित प्रयोग से शरीर के भीतर मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये फल त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाता है। कीवी में पाया जाने वाला विटामिन ई शरीर की त्वचा को नर्म रखता है। इसका नियमित प्रयोग त्वचा की कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने तथा इसको कोमल बनाए रखता है। कीवी का फल ओमेगा 3 फैटी एसिड और त्वचा रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन ई और सी से भरपूर ये फल बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत बनाता है।
इसके भीतर मैंगनीशियम, जस्ता और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे बालों के विकास में तेजी आती है। आयरन से भरपूर होने के कारण ये बालों को बढ़ाने में सहायक होती है। अच्छी बात यह है कि कीवी ऐसा फल है जिसको वे लोग भी निश्चिंत होकर खा सकते हैं जिनको शुगर की शिकायत है या जो मधुमेह के रोगी हैं। ये सब कीवी में मौजूद उच्च स्तर के फाइबर तथा फ्रुक्टोज के कारण होता है।
अगर आप नियमित रूप से कीवी का सेवन करते हैं तो ये हृदय को स्वस्थ करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल ना होने के अलावा इसमें पोटेशियम होता है, जो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को पतला करने में मदद करता है। ये धमनियों के रक्तचाप को भी कम करता है। कीवी शरीर में HDL के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। कीवी की एक विशेषता ये है कि ये रक्त के ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है और खून की चर्बी को ठीक करता है।
कीवी के भीतर कवरेसेटिन भी होता है। ये एक पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट है जो हृदय रोग के खतरों को कम करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन एक कीवी के फल का प्रयोग हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने का बेहतरीन मार्ग है। कीवी विटामिन के, कैल्शियम और खनिजों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ये पदार्थ हड्डियों के क्षतिग्रस्त होने और गठिया के जोखिम को भी कम करता है। यही कारण है कि कीवी शरीर की हड्डियों के रखरखाव और उनकी देखभाल के लिए उपयुक्त फल है।
कीवी के भीतर सेरोटोनिन की मात्रा अधिक होती है, जो स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इससे अवसाद के साथ ही अनिद्रा का भी इलाज किया जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कीवी का छिलका, जो कुछ कठोर सा होता है, नींद न आने की समस्या का समाधान करता है। वे लोग जिनको लीवर की समस्या है, उनके लिए कीवी एक अच्छा फल साबित हो सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कीवी विटामिन सी से भरपूर होती है, इसलिए ये लीवर के नुकसान को रोकती है।
विटामिन सी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं के पुनः बनने में मदद करता है। इसलिए ये जिगर के लिए लाभदायक हो सकता है। विशेष एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि जिगर ही शरीर का वो एकमात्र अंग है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को नई एवं स्वस्थ कोशिकाओं में बदलने में सक्षम होता है। कीवी के भीतर मनुष्य के DNA को ऑक्सीजन क्षति से बचाने की क्षमता पाई जाती है।
वैज्ञानिक अभी यह जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस एंटी ऑक्सीजेंज गतिविधि के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। उनका ये मानना है कि ये काम केवल विटामिन सी और बीटा कैरोटीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कुछ अन्य कारक भी हैं। कीवी कम कैलोरी वाला एक फल है जो शरीर की चर्बी को कम करता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण कीवी मोटापा कम करने और भूख को कम करने में प्रभावी है।
दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कीवी को जब भी खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कहीं से पिलपिली या दबी हुई न हो। अगर ऐसा हो तो आप उसे न खरीदें। कीवी को कमरे के नॉर्मल वातावरण में रखा जा सकता है। इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। इसको अन्य फलों के साथ नहीं रखना चाहिए। विशेष बात यह है कि जिन लोगों को खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है, उनको कीवी खाते समय सावधान रहना चाहिए। अगर इसको खाकर वे किसी भी प्रकार के एलर्जी का एहसास करते हैं तो उन्हें नहीं खानी चाहिए।
जिन लोगों को अनानास से एलर्जी होती है, उनके भीतर कीवी खाने से भी एलर्जी होने का खतरा है। हालांकि हर फल के ढेरों फायदे हैं, कीवी के भीतर भी बहुत से लाभ छिपे हुए हैं, लेकिन इस फल को किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बीमारी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर से संपर्क जरूरी है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें अनुमति दीजिए। श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो श्रोताओं, इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।